ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका गए थे। श्री ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की अमेरिका की ये पहली यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वाशिंगटन में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत बृहस्पतिवार की रात को शुरू हुई और लगभग 4 घंटे तक चली। इस दौरान सामरिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार, आर्थिक गतिविधि, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा, जनसंपर्क और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 21वीं शताब्दी के लिए अमेरिका भारत कॉम्पैक्ट का शुभारंभ किया। श्री मोदी सह उत्पादन समझौतों सहित रक्षा खरीद वार्ता को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए। दो देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यों की प्रवर समिति का गठन किया है। समिति के सभापति भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा होंगे। समिति अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आयकर विधेयक 2025 बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को मजबूत करना और उसमें सुधार लाना है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में केंद्र के एक दल ने कल चंडीगढ़ में किसानों की मांगों पर विचार विमर्श के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दोनों पक्ष 22 फरवरी को अगले दौर की बात करने पर सहमत हुए। बैठक के बाद श्री जोशी ने मीडिया से कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। इस दौरान किसानों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के बारे में जानकारी दी गई। श्री जोशी ने कहा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अगली बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल देर रात जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से अलग यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने की दिशा में जारी प्रयासों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारत यूक्रेन द्विपक्षीय सहयोग को आगे ले जाने पर भी बातचीत की। डॉ जयशंकर ने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से द्विपक्षीय सहयोग और यूक्रेन घटनाक्रम पर बात की। विदेश मंत्री म्यूनिख में जर्मनी के बावरिया राज्य के अध्यक्ष मार्कस सोडर से भी मिले। सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 17 वर्षों में पहली बार BSNL ने एक तिमाही में सर्वाधिक मुनाफा कमाया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 7 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह में 7.65 अरब डॉलर की वृद्धि हुई और ये 638 अरब 26 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे सप्ताह वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले सप्ताह मुद्रा भंडार में 6.42 अरब डॉलर की वृद्धि हुई और ये 544 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया था। परीक्षा पे चर्चा 2025 की पांचवी कड़ी में विद्यार्थियों को मस्तिष्क के चमत्कार के बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने सीखने को मनोरंजक बनाने और संतुलित जीवंत मस्तिष्क विकसित करने के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की। सदगुरु ने परीक्षा में ध्यान बढ़ाने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मजबूत सचेतनता तकनीक की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा के बारे में नहीं है। सदगुरु ने विद्यार्थियों से अपनी बुद्धि को गतिशील रखने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज शुरू हो गईं। परीक्षा में देश विदेश में 42 लाख से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए 7842 केंद्र बनाए गए हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा 18 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल को समाप्त होंगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कई उपाय किए हैं। तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को प्रोत्साहित करने की पहल काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोह का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।